पृष्ठ संख्या 158 अध्याय 13 तंत्र संप्रदाय। भारतीय धार्मिक जीवन में तांत्रिक क्रियाओं का विशेष एवं व्यापक स्थान है। ये क्रियाएं अन्य धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा अधिक जटिल हैं। इसके ज्ञाता अपने शिष्यों को तथा इसकी क्रिया करने वालों को इसका रहस्य नहीं बताते, क्योंकि इसे गूढ़ मानते हैं। इन क्रियाओं और उनसे संबंधित देवताओं का ज्ञान तंत्र साहित्य में होता है, जिसका विशाल भंडार इसके धार्मिक ग्रंथों में अलग से है तथा दूसरे धर्म ग्रंथों में भी स्थान स्थान पर इसका उल्लेख किया गया है। पर आज इसका व्यवहार सभ्य समाज में नहीं के बराबर है, क्योंकि इसका चलन अब मात्र आदिवासी जातियों तक ही सिमट कर रह गया है। इसके ग्रंथों की व्याख्या भी भारत में ही हुई, अब जानकारी के अभाव में मात्र एक दुरूह तथ्य बनकर रह गई है। इधर हाल में विदेशी विद्वान जान उडरफ ने इसकी व्याख्या कर समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, पर उन्हें अपने कार्य में आशातीत सफलता नहीं मिल सकी है, क्योंकि इसकी क्रियाएं अति गोपनीय हैं। इनके मंत्र अटपटे और अस्पष्ट हैं, फिर भी किसी न किसी रूप में कुछ वर्गों में जीवित हैं। ये ऐसे लोगों के बीच आज प्रचलित हैं जो सभ्य समाज से दूर एकांत स्थानों में रहने वाली जनजातियाँ हैं, जहाँ पुरानी परंपरा प्रचलित है। तंत्र शब्द की व्युत्पत्ति। तंत्र शब्द संस्कृत के तन या तंत्री से बना है। इसका अर्थ है विस्तार या व्याख्या। एस एन दास गुप्ता के अनुसार तन शब्दों को तंत्री से लिया गया है। विस्तार करने की भावना को यहाँ सीमित कर इसका अभिप्राय मात्र व्याख्या ही है। इस प्रकार इसका मौलिक उद्देश्य है कि किसी भी समस्या का वैज्ञानिक या व्यवस्थित विवाद। ईशान शिव गुरुदेव ने अपने ग्रंथ ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में इसकी व्युत्पत्ति तंत्री से बताया है, जिसका अभिप्राय है सम मना। उन्होंने इसे शैव धर्म के 6 पद्धतियों का समन्वय बताया है, यथा पशु, पास, पति, शक्ति, विचार और क्रियाचर्य। पिंगला मत के अनुसार तंत्र का अभिप्राय है विस्तार और सुरक्षा। इसके 2 स्वरूप यहाँ बताए गए हैं, आगम और निगम। आगम शब्द आगत, आना, गत, जाना और मत स्वीकृत शब्दों के प्रारंभ के अक्षरों आ, ग, म के योग से ही बना है। यह तंत्र सर्वप्रथम शिव ने पार्वती को बताया था। इसी प्रकार निगम तंत्र निर्गत से बना है, जिसे पार्वती ने शिव से कहा था। इसकी व्युत्पत्ति निर्गत, गिरीश और मत शब्दों से प्रथम अक्षरों नी, ग, म को मिलाकर बना है। इस प्रकार तंत्र शब्द मुख्यतया शैव और शाक्त धर्मों से संबंधित है। शब्द कल्पद्रुम में वाराही तंत्र का उल्लेख है, जो 7 विषयों को अपने में संजोए है, सृष्टि, विनय, ईश्वर, आराधना, साधन और पुरस्चरण। इनके साथ ही इसमें सम्मिलित है 6 निकृष्ट क्रियाएं और 4 प्रकार के ध्यान। कुछ ग्रंथों में यामल तंत्र की भी बात आती है। इसमें सृष्टि, ज्योतिष, जाति, विमुख, युग, धर्म आदि की चर्चा है। मम हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार इसमें संयुक्त देवताओं की पूजा होती है। अर्थ। संस्कृत वाङ्मय में तंत्र का अर्थ है शास्त्र। भारत के विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों को तंत्र के नाम से पुकारा जाता है, जैसे कपिल तंत्र, गौतम तंत्र आदि। जैमिनी मीमांसा में दर्शन के एक पक्ष को जैमिनी तंत्र कहा गया है। भट्टो जी द्वारा रचित तंत्राधिकार निर्णय में पूर्व तंत्र और उत्तर तंत्र का उल्लेख है। ये क्रमशः मीमांसा और वेदांत के बोधक हैं, पर अतीत में शैव, वैष्णव, गाढ़पति, शाक्त आदि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के मानने वाले इसे आगम नाम से जानते थे। वर्तमान काल में इसका प्रयोग ऐसे साहित्य के लिए किया जाता है जो रहस्यमय और जादुई हो तथा इसका संबंध मातृदेवी शक्ति के साथ जुड़ा है। फिर भी यहाँ तंत्र शब्द को ही मानना उचित है, क्योंकि आज यही चलन में है। तंत्र का उद्भव। यद्यपि वैदिक काल से तंत्र की उत्पत्ति ज्ञात होती है, पर यह स्पष्ट नहीं कि कहाँ, कब और किन लोगों ने सबसे पहले तंत्र का प्रयोग प्रारंभ किया था। यह तो साधारणतया स्वीकार किया जाता है कि इसका प्रारंभ समाज के निम्न वर्गों में हुआ होगा, जहाँ से उच्च वर्गों के लोगों ने इसे ग्रहण कर इसको व्यवस्थित किया होगा और इसको दार्शनिक स्वरूप प्रदान किया होगा। जयद्रथ यामल के अनुसार तेलियों और कुंभकारों के घरों में दुर्गा की पूजा होती थी। हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार यह शिवव्रात्यों अर्थात अवैदिक एवं असभ्य परिवार का देवता था। वाड़भट्ट ने कादंबरी में वर्णन किया है कि सामान्य लोग तंत्रों का प्रयोग करते हुए मांस मदिरा रक्त आदि के द्वारा देवताओं का पूजन करते थे। चंडिका के मंदिरों का भी उल्लेख इसमें किया गया है, जहां पुराने द्रविड़ लोग उपासक होते थे और उनका परिवार मातृ प्रधान था। यही विचार आरपी चंद का भी है। वीसी मजूमदार के अनुसार दुर्गा की पूजा अनार्य प्रकृति की बोधक है, जो गौडवाहों के अनुसार कोलियों और सवरों में पूजित होती थी। इन विवेचनों से स्पष्ट है कि तंत्र की उत्पत्ति निम्न वर्ग के परिवार से, जो संभवतः अनार्य थे, प्रारंभ होकर भारत के विभिन्न भागों और वर्गों में फैली। तंत्र की उत्पत्ति का स्थान अनेक विद्वानों द्वारा के अनुसार भारत के बाहर उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्र माना है, वहीं से यह भारत में फैला। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि हिमालय के पार प्रदेश में यह पद्धति प्रचलित थी, जहां से भारत आई। साधन माला के अनुसार तांत्रिक देवी तारा मूलतः भोट या तिब्बत की थी। देवी भागवत में इसकी उत्पत्ति का स्थान चीन बताया गया है। वामाचार और कुलाचार का स्थान काली तंत्र में चीन या महाचीन बताया गया है। एक ग्रंथ के अनुसार मेरु पर्वत के पार प्रदेश में कोलंग नामक झील के प्रदेश में तारा की उत्पत्ति का उल्लेख है। ए एच फ्रैंके के अनुसार वही तार नामक गांव है जहां तारा का उद्भव हुआ होगा और उसी स्थान के एक स्थल को शक्ति कहते हैं। शिव को हिमालय का देवता माना गया है, इसी से उन्हें कैलाशवासी तथा यक्षों गणों गंधर्वों से घिरा हुआ बताया गया है। साथ ही कहा जाता है कि उनकी पत्नी हिमालय की पुत्री है तथा शंकर अपनी जटा में हिमालय से निकलने वाली गंगा को धारण किए हैं। हिमालय पार प्रदेश के आक्रमणकारी जो भारत में आए थे, शक, पहलव, कुषाण और हूण सभी शैवोपासक थे। बुड्डी मल्लम में मंगोलियन आकृति के शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। कुब्जी कामाता के अनुसार कुब्जिका नामक देवी भी भारत में बाहर से ही आई हैं। हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार तुर्किस्तान के पुजारी इनकी पूजा में निपुण थे। डॉक्टर डीबी स्पूनर के अनुसार शाक्त उपासना ईरानी है। हडसन के अनुसार तुरानी अंधविश्वास के कारण स्वरूप ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों में तंत्र साधना को स्थान मिला। एलडी बर्नेट ने श्याम की परंपरा से भारतीय तंत्र की उत्पत्ति सिद्ध करने का प्रयास किया है। पर भारतीय विचारकों की दृष्टि में तंत्र का मूल उद्भव केंद्र बंगाल था। इस संबंध में प्रोफेसर विंटरनिट्स के अनुसार यह बंगाल में प्रस्फुटित हुआ, जहां से आसाम, नेपाल, तिब्बत और चीन के पार प्रदेशों में बौद्ध धर्मानुयायियों के माध्यम से फैला। एक मत के अनुसार तंत्र विद्या का उद्भव बंगाल में हुआ और इसका विस्तार मिथिला महाराष्ट्र से होता हुआ अवनत कालीन अवस्था में गुजरात तक फैल गया। वरदातंत्र का केंद्र बंगाल के प्रारतोषिनी नामक स्थान को मानते हैं। कौल तंत्र की उत्पत्ति कामरूप या आसाम से मानी जाती है। एक शाखा के अनुसार पूर्वी बंगाल के चंद्रद्वीप से इसका उद्भव बताया जाता है। पुराणों में हिमालय से इसका संबंध जोड़ा गया है। रामायण भी ऐसा ही बताता है। गुजरात से भी कुछ लोग इसका संबंध जोड़ते हैं। इससे स्पष्ट है कि तंत्र की अनेक शाखाएं थी और इस विविधता का कारण था विभिन्न क्षेत्रों में उसकी विविध नामों से प्रकारों की मान्यता। यद्यपि यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, पर इतना तो सही ही है कि यह भारतीय भूमि में 500 वर्ष पहले से फैल चुका था। यह धर्म आंशिक रूप से वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक है। तंत्र भारतीय समाज का एक व्यापक अंग है। पर आज भी इसे व्यापक दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तंत्र का स्वरूप मतंग परमेश्वरी तंत्र में इसके चार पदों की चर्चा है, विद्या, क्रिया, योग और चर्या। कहीं कहीं योग और चर्या के लिए दूसरे व्याख्याकारों ने पाश्या और सिद्धि का उल्लेख किया है। पंचरात्र सिद्धांत के अहिर बुद्धन्य संहिता में इसके 10 अंगों का उल्लेख है, पर मुख्य रूप से तंत्र साहित्य की विषय वस्तु को 2 मूल खंडों में विभक्त किया जा सकता है, क्रिया तंत्र और योग तंत्र। तंत्र की मूल विशेषताओं में सबसे प्रमुख क्रिया है दीक्षा। इसके द्वारा तांत्रिक को अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह तंत्र के नियमों के अनुसार साधना करे। जाति या लिंग भेद के हिंदू धर्म संबंधी या उसको किसी भी देवता की उपासना के लिए दीक्षित करता है। इसके बाद दीक्षित व्यक्ति को मंत्र दिया जाता है जिससे वह अपने अभीष्ट देवता की आराधना करे। इस मंत्र को वह गोपनीय रखता है। मंत्र को व्यक्ति की विशेषता, पारिवारिक परंपरा आदि के अनुरूप देते हैं जिसे वह उस देवता की पूजा के समय अथवा दैनिक क्रियाओं के समय प्रयोग करता है। जब वह इस प्रकार की साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसका पूर्णाभिषेक किया जाता है और उसके बाद वह उपासना की 2 विधियां अपनाता है, भूत शुद्धि और न्यास। इनके द्वारा शरीर की शुद्धि होती है तथा दैवी आत्मा से मानवीय आत्मा का सम्मिलन होता है। मंत्रों को एक या कई भागों में उच्चारित करते हैं, फिर विभिन्न क्रियाएं करते हैं जिससे कि मंत्र प्रभावक बन जाए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पुरुष चरण, जिसके 5 तत्व होते हैं। निर्धारित संख्या में मंत्रों का उच्चारण, होम, तर्पण, अभिषेक के समय घड़े में संबंधित यंत्र रखकर जल से भरकर आम्र पल्लवों को उसमें डालकर देवता पर चढ़ाया जाता है। यंत्र देवता का रूप होता है। विशिष्ट देवताओं की दैनिक पूजा के अतिरिक्त प्रमुख त्योहारों पर भी इसके पूजन का आयोजन किया जाता है। शक्ति उपासना में जो कर्म कांड किए जाते हैं वे बड़े विचित्र प्रकार के होते हैं। ये हैं षटकर्म, द्वित्याग या पंचमकार, मदिरा, मांस, भूना हुआ अन्न, शारीरिक संबंध तथा शव साधना। इनमें वैदिक स्मृति की क्रियाएं भी की जाती हैं। इसमें संस्कार भी किया जाता है, जैसे उपनयन आदि, जिसकी क्रियाएं पौराणिक क्रियाओं की तरह होती हैं। वैदिक मंत्रों का प्रयोग विनाशात्मक तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है, पर प्रश्न है कि वैदिक मंत्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है। इस संबंध में ज्ञात होता है कि इनके साथ कुछ अन्य मंत्र भी जोड़ दिए जाते हैं, जैसे परशुराम कल्पसूत्र में 7 ऋग वैदिक मंत्रों का उल्लेख है। सरस्वती हस्योपनिषद में सरस्वती और वाक के 10 मंत्रों का प्रयोग 7 करने का विधान है। फिर भी वैदिक क्रिया और तांत्रिक क्रिया के प्रयोग में कुछ अंतर है। तंत्र की विशेषताएं। तांत्रिक क्रिया प्राचीन भारतीय साधना की एक प्रमुख कड़ी रही है, जो आज भी उन लोगों में विद्यमान है जो वर्तमान सभ्यता एवं संस्कृति से बहुत दूर हैं। ये क्रियाएं सर्वत्र समान रूप से प्रयोग में देखने को मिलती है। ये निम्न है। 1. तांत्रिक षटकर्म। ये है ताबीज का प्रयोग, काम संबंधी क्रियाएं, मादक द्रव्यों का प्रयोग, बिना अर्थ के शब्द वाले मंत्रों का प्रयोग आदि। ये विशेषताएं विश्व के प्राचीन धर्मों में सर्वत्र देखने को मिलती है। 2. शत्रु की मूर्ति पर आघात। ये जादुई क्रियाएं हैं जिससे शत्रु के विनाश का उपाय किया जाता है। उसके प्रसंग में डॉक्टर फ्रेजर के अनुसार शत्रु के विनाश के लिए उसकी कल्पित आकृति बनाई जाती है, चाहे मोम की, मिट्टी या किसी दूसरे वस्तु की। फिर उसे किसी नुकीली चीज से छेदा जाता है तथा आग में जलाया जाता है, इस भावना से कि इस क्रिया द्वारा शत्रु के शरीर को इसी प्रकार का कष्ट मिलेगा। ईरान में भी इसी प्रकार की पद्धति का उल्लेख डॉक्टर जे मोदी ने किया है कि वहां राज्य की ओर से मना था कि मृतक शरीर के साथ सुई या कोई ऐसी दुखदायी वस्तु न गाड़ी जाए ताकि जिससे उसका भावी जीवन कष्टमय हो। जरथुस्त्रनामा में भी लिखा है कि जरथुस्त्र को कष्ट देने के लिए कमरे में ये सब सामग्रियां रखी जाती थी। 3. ताबीज और यंत्रों का प्रयोग। ये व्यापक चलन में थे। प्राचीन काल के लोग इनका नाम अभिमंत्रित अंगूठियों का प्रयोग बाधाओं को रोकने के लिए करते थे। 4. अशुद्ध और विरोधी क्रियाएं। यूनान, रोम, दक्षिणी पश्चिमी सागर के द्वीप समूहों में इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। विश्वास था कि ऐसा करने से प्रेत बाधा नहीं आती है। 5. जननेन्द्रियों की उपासना। संपूर्ण विश्व में इसकी पूजा की जाती थी। इसके लिए जननेन्द्रिय के प्रतीकों का प्रयोग किया करते थे। यह प्रत्येक समाज के आंतरिक व्यवस्था के साथ जुड़ चुका था। इसी का एक रूप लिंग पूजा के रूप में भारत में तथा विभिन्न देशों में आदिकाल से पाया जाता है। वान महोदय ने तो सभी धार्मिक क्रियाओं में इसका स्थान स्वीकार किया है। प्राचीन मिश्र, यूनान, रोम और यहाँ तक कि ब्राह्मण धर्म, शिवोपासना और ईसाई धर्म में भी इसका चलन था। 6. मादक द्रव्यों और मुद्राओं का प्रयोग। प्राचीन काल के लोग तंत्रोपासना में विभिन्न प्रकार के शुरा और मादक पेय का प्रयोग करते तथा शरीर के अंगों की विभिन्न मुद्राओं, आसन और न्यास के द्वारा तंत्र की उपासना करते थे। 7. जादुई नामों का प्रयोग। कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण इसमें करते थे जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता था। ये मात्र रहस्यमय होते थे। इनके द्वारा वे अपनी तांत्रिक साधना पूर्ण करते थे। गाइगर के अनुसार ऐसे शब्दों के प्रयोग के द्वारा वे दुष्प्रभावक तत्वों के आक्रमण को अपने पर होने से रोकते थे तथा दूसरों पर उसे भेजते थे। भारत में तंत्र की प्राचीनता और ऐतिहासिकता का विकास। कुछ विचारकों के अनुसार तांत्रिक क्रियाएं द्रविणों और अनार्य लोगों की उपज हैं, जिसे पीछे आर्यों ने ग्रहण करके तंत्र के रूप में व्यवस्थित किया। इसका व्यवस्थित ज्ञान इसके ऐतिहासिक विकास में ही देखा जा सकता है। पूर्व ऐतिहासिक काल। ब्रूसफुट ने दक्षिणी भारत में लिंग प्रकार की अनेक सामग्रियां आकृतियां की हैं। ये तंत्र के प्रारंभिक रूप माने जा सकते हैं। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने भारत में तंत्र का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से माना है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि प्रारंभिक सिक्कों पर कुछ ऐसे चिन्ह बने हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकी है। उन्हें तांत्रिक चिन्ह ही स्वीकार करना उचित होगा। उन्होंने आगे यह भी बताया है कि त्रिपुनोपनिषद में चित्रांकित तंत्र का उल्लेख पूर्व ऐतिहासिक युग में तंत्र साधना का बोधक है। वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में प्रत्यक्षतः तो नहीं पर प्रसंगवत वर्णित क्रियाओं के द्वारा तंत्र के होने की संभावना की जा सकती है। स्पष्ट रूप से योग के सैद्धांतिक क्रियाओं का तथा तांत्रिक कर्मकांडों का कोई उल्लेख नहीं यहाँ नहीं है। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि उस समय तंत्र साधना का विकास नहीं था। फिर भी कुछ लोगों ने वैदिक साहित्य से इसकी प्राचीनता का जोड़ने का प्रयास किया है। अथर्ववेद के सौभाग्य कांड में तंत्र की उत्पत्ति की ओर संकेत मिलता है। काली कुलाल तंत्र में अथर्वण संहिता की चर्चा आई है। रुद्रयामल में महादेवी अथर्ववेद शाखिनी का उल्लेख है। भास्कराचार्य तंत्र का संबंध उपनिषद, शवुल सूत्र और धर्म संहिता से जोड़ते हैं। रुद्र उपनिषद और कौल उपनिषद का सीधा संबंध वेद और तंत्र से बताया जाता है। यंत्र चिंतामणि में अथर्ववेद का उल्लेख है। वैष्णवों के पंचरात्र सिद्धांत में किसी अज्ञात वैदिक शाखा की चर्चा है। कुलालों में तंत्र की कौल क्रियाओं को वेद से जोड़ा गया है तथा वैदिक विचारों का उल्लेख इसकी पुष्टि के लिए किया गया है। आकृति बनाकर पूजा करने की विधि तैत्तरीय आरण्यक में दी गई है। इनसे स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य का तांत्रिक क्रियाओं से किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य रहा होगा। वैदिक पूजा में सुरा का प्रयोग सोमरस के नाम से संभवतः किया गया है, जो तंत्र साधना का एक माध्यम है। गीत के अनुसार वैदिक पूजा में एक अस्पष्ट शब्द फट का प्रयोग होना तंत्र की ओर संकेत करता है। पशु बलि, मांसाहार, कृष्ण देवों की पूजा, षटकर्म का उल्लेख, शक्ति की उपासना, रोगों को भगाने के लिए मंत्रों का प्रयोग, नशा उतारने के लिए मंत्र, मारण और उच्चाटन की क्रियाएं, वाद स्नेही संहिता को यामल स्त्रोत्र सूत्र और तैतरेयी आरण्यक में मिलता है। तैतरीय संहिता में दूसरों को अपने वश में करने का उल्लेख है जो तांत्रिक क्रिया से संबंधित है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख तांत्रिक भावना को बल देता है। भूत प्रेत डंकिनी पिशाचिनी की भी वहां चर्चा है। सुरक्षा के लिए ताबीजों का भी उल्लेख किया गया है। बौद्ध काल, बौद्ध साहित्य में बौद्ध ग्रंथों से तंत्र का ज्ञान मिलता है। पाली बौद्ध ग्रंथों में कुछ ऐसी क्रियाओं का उल्लेख है जो पूर्णतया तांत्रिक है। बुद्ध ने भी पंच काम गुण अर्थात पंचम कार का उल्लेख किया है। लगता है उस समय भी यह प्रचलन में था। मध्यम निकाय में काम वासना को बुरी दृष्टि से नहीं देखा गया है। ऐन्द्रिक सुख को धार्मिक क्रिया का अंग माना जाता था। कथा वत्थु में मैथुन को धर्म कहा गया है। चुल्ल वग्ग में मुंडधारी भिक्षुओं का उल्लेख है जो कपाल लेकर भिक्षाटन के लिए जाया करते थे। यद्यपि लोग इसे देखकर आश्चर्य में रहते थे। श्मशान भूमि में भिक्षुओं के रहने का उल्लेख मध्यम निकाय में है। जादुई क्रियाएं भी इस समय प्रचलन में थी। तेवीजीय सूत्र में ब्राह्मण और श्रमणों द्वारा जादू के प्रयोग का उल्लेख है। कुछ श्रमण और ब्राह्मण इनके द्वारा अनेक रोगों का निदान भी करते थे। ब्रह्मजाल सूत्र में जादू के द्वारा लोगों के सौभाग्य और दुर्भाग्य की व्यवस्था का विवरण मिलता है। यह भी कहा गया है कि ऐन्द्रिक सुख से निर्वाण की प्राप्ति होती है। जैन साहित्य में जैन प्राकृत ग्रंथों में तंत्र का उल्लेख है। महावीर ने बताया है कि रहस्यवाद के मानने वाले कामुक होते हैं। यहाँ भी जादू के प्रयोग की चर्चा है। मौर्य काल से पूर्व गुप्त काल तक धर्मशास्त्रों और पुराणों में धर्मशास्त्रों और संहिताओं में तांत्रिक क्रियाओं की भर्त्सना की गई है। मनु याज्ञवल्क्य एवं आपस्तंभ धर्मशास्त्रों में इसका उल्लेख है। ब्रह्म सूत्र के अनुसार शैव धर्म और पांचरात्र संप्रदाय में तंत्र का संकेत मिलता है। पातंजलि के योग सूत्र में भी मदिरा पीकर आराधना करने से साधना में सिद्धि प्राप्ति का वर्णन है। विभिन्न पुराणों में तांत्रिक क्रियाओं की चर्चा मिलती है। तांत्रिक पूजा से संबंधित पुराण भी हैं, देवी कालिका लिंग आदि। पद्म पुराण और कालिका पुराण में षट चक्र का व्यापक विवेचन है, किंतु कुछ पुराणों में तंत्रों की निंदा भी की गई है। इसमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है कुर्म पुराण। महाकाव्यों में तंत्र, रामायण में कहीं कहीं ऐसी क्रियाओं का वर्णन है जो तंत्र से संबंधित है। सीता जब राम के साथ वन गमन के समय गंगा पार कर रही थी तो उन्होंने गंगा देवी से प्रार्थना किया था कि सकुशल लौट आने पर मांस और मदिरा से मैं आपकी पूजन करूंगी। महाभारत में भी इसी प्रकार के स्थल कहीं कहीं मिलते हैं। यद्यपि इन्हें प्रक्षिप्त कहा गया है, वहां शिवलिंग की पूजा तथा दूसरी तांत्रिक क्रियाओं का उल्लेख है। साहित्य ग्रंथ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार के सम्मोहन और तांत्रिक मंत्रों का उल्लेख है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्मशान भूमि में बलि देने की चर्चा भी की गई है। जिन देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी उनके नाम भी बड़े विचित्र हैं, जैसे अमिल किमिल वाजू वापुजर आदि। ललित विस्तार में निगम शाखा के ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ उपासना में तंत्र मदिरा और मांस के प्रयोग का उल्लेख है। निर्जर साधना की भी चर्चा की गई है जिसे मोक्ष प्राप्त हो सके। श्मशान भूमि तथा चारागाहों में देवी देवताओं के पूजन का भी उल्लेख है। भिक्षुओं द्वारा कपाल तथा खड्गवांग धारण करने खड्वांग धारण करने का भी ज्ञान मिलता है। अश्वघोष ने बुद्ध के समय काली पूजा की चर्चा की है, जो अपने हाथ में कपाल का प्याला लेकर शराब के नशे में कामुकता से उत्तेजित बोधिसत्व के सामने खड़ी हैं। बुद्ध पर मार विजय की चर्चा में मार के हाथ में त्रिशूल और खड्गवांग के होने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम शताब्दी में तांत्रिक देवी देवताओं का स्थान भी समाज में था। गुप्तकाल। गुप्तकालीन लिपि में तंत्र ग्रंथों की अनेक पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। सर्व ज्ञानोत्तर तंत्र के कुछ अंश गुप्त लिपि में मिले हैं। कुब्जिका का तंत्र की पांडुलिपि भी गुप्त लिपि में है। निश्वास संहिता की पांडुलिपि पर्वतीय गुप्तकालीन लिपि में है। सौर संहिता में गुप्त लिपि में तंत्रों के अनेक सूत्र लिखे गए हैं। गुप्तोत्तर काल। इस समय तंत्र संहिता की अनेक रचनाओं का ज्ञान मिलता है। छठी शताब्दी ईस्वी के बहुत से बौद्ध धर्म से संबंधित तंत्र ग्रंथ उपलब्ध हैं, तथा भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरण से भी तंत्र की प्रमुखता का ज्ञान मिलता है। बौद्ध भिक्षुणियों में तंत्र की प्रधानता ज्ञात होती है। इसका उल्लेख फाहयान ने किया है। वेनसोंग ने भी धारिणी या विद्याधर पिटकस की चर्चा की है, जो तंत्र से संबंधित है। जापान में ताड़पत्र पर लिखित धारिणी के अतिरिक्त 5 तंत्रों का उल्लेख है। अमोघ वर्ष ने 77 ग्रंथों का अनुवाद किया था, जिनमें कई तंत्र के हैं। अति सुदीपंकर चार प्रकार के तंत्रों का विशिष्ट ज्ञाता था। तारानाथ ने भी अनेक तांत्रिकों का उल्लेख किया है, जिनमें असंग का नाम भी लिया है। इसके अतिरिक्त बुद्ध कपाल तंत्र को सरह ने, योग निश्चर्या को लूपा ने, हेमराज तंत्र को कंबक ने, संपू तिलक को कृष्णाचार्य ने प्रारंभ किया था। एक तांत्रिक देवी तारा का उल्लेख एक पुराने ग्रंथ में हुआ है। इसकी प्रतिमाएं भी पंडित हीरानंद शास्त्री के अनुसार 7वीं शताब्दी के आसपास की मिली हैं। कुलाचार संप्रदाय मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित किया गया था। गोरखनाथ को भी तंत्र संप्रदाय के कौलतंत्र में सिद्ध हस्त मानते थे। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि ईस्वी सन के पूर्व ही से तंत्र समाज में विशेष व्यापक रूप में प्रचलित था। इसका संबंध वैष्णव, शैव, शाक्त और बौद्ध संप्रदायों से रहा है। आगम और निगम इसका प्रमुख शास्त्र है। आगम शिव से संबंधित है और निगम देवी पार्वती से, इसलिए इसका प्रमुख पक्ष शैव और शाक्त दोनों ही है। वैष्णव तंत्रों की भी चर्चा प्राप्त होती है, जिसमें प्रधान विष्णु हैं, तथा बौद्ध तंत्रों में बुद्ध और बोधिसत्व को प्रधान माना गया है। कुछ ऋषियों से भी तंत्र का संबंध जोड़ा गया है, जैसे दत्तात्रेय, अष्टवक्र, भारद्वाज, शरद कुमार आदि। तांत्रिक देवता। तंत्रों और पुराणों में मातृदेवियों की पूजा की चर्चा मिलती है। कुमारी पूजा की इसमें विशेष महत्ता है। इसके द्वारा सभी दुष्ट वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसमें बिना देवी के देवता की पूजा लाभकर नहीं होती, इसलिए इसमें कुमारी कन्याओं के खिलाने का चलन है। तंत्रों में मंत्र का स्थान प्रमुख है, तब देवार्पण की सामग्री और फिर देवता का नाम आता है। अनेक क्रियाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है। देवताओं को नमः, स्वाहा, स्वधा व उसट, निवेदयामी आदि शब्दों के द्वारा पूजित करते हैं। पूजा में आचमन, स्वस्तिवाचन और घट स्थापन की क्रिया की जाती है। आवश्यक नहीं कि इसमें देवताओं की मूर्तियां बनाई ही जाए। इनके देवताओं को विभिन्न वर्गों में रखा जाता है। गणेश की पूजा गणपति, महागणपति, वीर गणपति, शाक्त गणपति, हेरभ, हरिद्रा, एकदंत आदि अनेक नामों से तंत्रों में की जाती है। कहीं कहीं पर इनके वाहन के स्थान पर मूषक की जगह सिंह का भी अंकन है। वीर गणपति के हाथ में मदिरा से भरा कपाल का प्याला भी प्रदर्शित है। सूर्य और चंद्रमा की विभिन्न आकृतियां की पूजा भी यहाँ होती है। सूर्य को चतुर्भुजी, त्रिनेत्रधारी, अष्टमुखी और हाथ में कपाल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। चंद्रमा को नीले बालों से युक्त दिखाया गया है। रक्त कमल पर बैठे हुए चतुर्भुजी सूर्य की पूजा होती है, जिनके एक हाथ में कमल का फूल होता है। शिव की पूजा क्षेत्रपाल, भैरव आदि विभिन्न रूपों में की जाती है। इसमें शिव का स्वरूप श्वेत चंद्र से सुशोभित आभूषणों से युक्त तथा उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। यह पंचमुखी और त्रिनेत्रीय होते हैं। क्षेत्रपाल एक स्थानीय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भैरव, असितांग रुद्र, महाकाल की पूजा काली के साथ यहाँ की जाती है। बटुक भैरव का भी उल्लेख है। वैष्णव देवताओं में लक्ष्मी, वासुदेव, हरिहर, दधिवाहन, यग्रीव, गोपाल की पूजा का भी ज्ञान मिलता है। शाक्त देवताओं में विद्या, नित्या, महाविद्या आदि का उल्लेख है। काली का नाम इसमें सर्वप्रथम है। कामाख्या, नील सरस्वती, तारा, छिन्न मस्तका, महादुर्गा, शैलवासिनी, धूमावती, कमला, त्रिपुरा, चामुंडा, कात्यायनी, भुवनेश्वरी आदि का उल्लेख मिलता है। नवचक्रेश्वरी की भी चर्चा की गई है। काली, दुर्गा और तारा की विशेष पूजा इसमें की जाती है। तारा के विभिन्न रूपों नील सरस्वती, उग्र तारा, एक जटा, विद्या रागी, वागीश्वरी और सरस्वती आदि नामों से इनकी पूजा की जाती है। इनके अलग अलग रूपों और गुणों की चर्चा तंत्र साहित्य से प्राप्त होती है। इसी में बगलामुखी, कर्ण पिचासी आदि का भी पूजन होता है। इनके अतिरिक्त कुछ सामान्य देवियों की भी पूजा होती है, जैसे कश्मीर की सारिका, नेपाल की कुब्जा, इंद्रक्षिणी, रंकिनी आदि। तांत्रिक संप्रदाय। तांत्रिक क्रियाओं और देवताओं के आधार पर यह अनेक संप्रदायों तथा उप संप्रदायों में बटा हुआ है। इसके तीन प्रमुख संप्रदाय शैव, शाक्त और वैष्णव हैं, और दो सामान्य संप्रदाय सूर्य और गणपति हैं। इन मूल शाखाओं के अतिरिक्त कई उप शाखाओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे शक्ति संगम तंत्र में वैष्णव, गणपत्य, शैव, स्वयंभू, पाशुपत, चीन, जैन, कालामुख आदि संप्रदायों का उल्लेख है। वीरागम में शैवों के चार संप्रदायों का उल्लेख है। सामान्य शैव, पूर्व शैव, मिश्र शैव और शुद्ध शैव। अन्यत्र शैव, पाशुपत, काहड़िक, सिद्धांतिन और कापालिकों का वर्णन है। पुराणों में वाम, पाशुपत, सोम, लांगल, भैरव, कापाल और नाकुल संप्रदायों की चर्चा मिलती है। इन्हें अवैदिक संप्रदाय माना गया है। लांगल और नाकुल से नाकुलेश पाशुपत सिद्धांत की उत्पत्ति बताई गई है। कापालिक छह मुद्राओं, दो उप मुद्राओं और अन्य सामान्य मुद्राओं के जानकार हैं। ये चार आभूषण यथा गला, कान, सिर पर लगा हुआ भस्म, जनेऊ और मुंड माला धारण करते हैं। कपाल में सुरा पीते हैं और मनुष्य की हड्डियों की माला पहनते हैं। शैव संप्रदायों में कश्मीर का प्रतिभिज्ञा संप्रदाय, सिद्धांत आगम, लिंगायत तथा वीर शैव विशेष महत्व के हैं। इनके अनुयायियों के दर्शन और कर्मकांड भिन्न भिन्न हैं। ये अपने साथ लिंग धारण किए रहते हैं। शक्ति के साधक वीर पशु दक्षिण, वाम, चीन, कौल, श्याम आदि का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। पशु की पूजा तंत्र में सामान्यतया नहीं होती है। कौल के संबंध में बड़ा विभेद है। कुछ लोगों के अनुसार कुल की परंपरागत उपासना विधि के कारण इसे कौल कहा जाता है और जो इसका पालन करते हैं उसे कौलिक कहते हैं। कौल शास्त्र के अनुसार पूजा की सामग्रियों का ज्ञान पूजक और पुजारी दोनों को होता है। यहाँ शरीर एक प्रकार से कुल को सौंप देते हैं और जो इस रहस्य को जानते हैं उसे कौला कहते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए बताया गया है कि कौल का संबंध आकुल, शिव और कुल शक्ति के संबंध से हुआ है। कौल संप्रदाय के उपासक पूर्व कौल, उत्तर कौल, कापालिक, दिगंबर आदि संप्रदायों में बटे हैं। ये पूजा के समय नंगे रहते हैं। ये कामाचारी क्रियाएं करते हैं। तारा की पूजा में वामाचार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। महाचित्राचार कुलाचार की तरह का ही एक संप्रदाय है जिसमें पूजा के लिए शुद्धता का कोई बंधन नहीं है। इसी प्रकार का एक दूसरा संप्रदाय पांचरात्र है, जो पांच प्रकार के ज्ञानों से संबंधित है। इसका शिव, देवी, गणेश, ब्राह्मण, ब्रह्मा और महाकाली आदि देवताओं से संबंध है। तांत्रिक कर्म कांड। कुछ लोगों ने तंत्र के संबंध में कहा कि यह लोगों से में सामान्यतया भ्रष्टाचार पैदा करने के लिए बनाया गया है। यह तंत्र के आवरण में धर्म शास्त्र नहीं बल्कि काम शास्त्र है। इसलिए देशी एवं विदेशी विचारकों ने तंत्र शास्त्र की उपेक्षा की है। यही कारण है कि पहले संस्कृत साहित्य में तंत्र शास्त्र का अध्ययन उपेक्षित था, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं के ज्ञान के बिना इसके साहित्य की समुचित व्याख्या संभव नहीं है। अतः इसके सिद्धांत और साहित्य के संबंध में अनेक भ्रांतियां आज भी विद्यमान हैं, पर गहन अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत आत्मा का परमात्मा के से संयोग कराने के लिए यह एक सहायक साधन है। इसका पहला सिद्धांत यह है कि जिस कल्पित देवता की आराधना की जाती है उसके साथ एकाकार किया जाता है। इस प्रकार अत्याचार और भावना दोनों का इसमें समन्वय होता है। अतः बाह्य उपासना और ध्यान का इसमें कोई विशेष स्थान नहीं है। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की तरह पांच तांत्रिक दार्शनिक परंपराओं की स्वीकृति है, परंतु उनका एकीकरण एक ग्रंथ में नहीं है। और वेदांत सूत्र की व्याख्या भी ये पांचों दार्शनिक सूत्र अपनी दृष्टि से अलग नहीं मानते। ऐसी क्रियाओं से दूर रहते हैं जैसे क्षत्रिय मदिरा नहीं पीते हैं। वे देवताओं को मात्र चढ़ाते हैं। कभी कभी इनका लाक्षणिक प्रयोग भी स्वीकार किया गया है, जैसे मदिरा से अभिप्राय लिया गया है वचन या नियंत्रण करना। जो कुछ भी घृणित क्रियाएं होती हैं वे कुछ ही लोगों द्वारा की जाती हैं, और उनका धार्मिक प्रयोग नियंत्रित होता है। जैसे प्राणानंद संप्रदाय में पशु बलि का पूर्ण निषेध है। ऐन्द्रिक सुख के लिए इनका प्रयोग घृणित और निंदित माना जाता है। कौल प्रकार की पूजा में पंच मकार को श्रेष्ठ विधि मानते हैं, किंतु इसे सबसे कठिन उपासना विधि माना गया है। अतः यह सामान्य जनता के लिए निषिद्ध है। इसकी अतिवादी क्रियाएं केवल उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने इंद्रियों पर अधिकार पा लिया है तथा तंत्र साधना में बहुत आगे हैं। वास्तविक कौल तो वह है जो किसी भी वैदिक विपदा में विचलित नहीं होता। यह केवल उसी के लिए संभव है जो योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करे। इसलिए यह कहना कि तंत्र साधना लंपटता या काम शास्त्र को बढ़ावा देता है एक गलत धारणा है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण को बल देता है। यह दुखद है कि तंत्र साधकों में बहुत अधिक अपने क्रिया व्यापार में इतनी अभद्रता और धर्म विरोधी क्रियाओं को करते हैं कि वे अपने लिए आलोचना के पात्र ही नहीं बनते, बल्कि तंत्र की महत्ता के लिए भी घातक सिद्ध होते हैं। कुछ चरित्रहीन लोगों द्वारा तांत्रिक क्रियाओं का दुष्प्रयोग भी किया जाता है तथा इसकी साधना में इतनी जटिलता है कि इसका उचित पालन लोग नहीं कर पाते हैं। कौलार्णों के अनुसार कौल मत को मानने वाले अज्ञानतावश परंपरागत क्रियाओं में भेद उत्पन्न करते हैं। वे तांत्रिक क्रियाओं के विरोधी कार्य करते हुए भी अपने को तांत्रिक बताते हैं। इस प्रकार दो तांत्रिक साधना प्रचलित हैं, एक वैदिक और दूसरा अवैदिक, या एक प्रामाणिक और दूसरा अप्रामाणिक। लेकिन दूसरे धर्मों द्वारा आक्षेप करने के कारण इसे निंदनीय कहा जा सकता है।